हरे कृष्णा। आप सब इस्कॉन के बारे में जानते हैं? हाँ, इस्कॉन के साथ कौन कौन जुक्त हुए हैं आप लोग? हाथ उठाइए। इस्कॉन के साथ जुक्त होने के लिए क्या किसका जरूरत होता है? चार नियम पालन करने का जरूरत होता है। वो चार नियम कौन कौन पालन कर रहे हैं? वेरी गुड। और क्या करना पड़ता है? 16 माला जपना होता है, मतलब भगवान के नाम जप करना। 16 माला हो या उससे कम भी हो, आप में से कौन कौन जप कर रहे हैं? वेरी गुड, वेरी गुड, थैंक यू। मैं पहले देखना चाहता था कि आप कौन स्तर में हैं, ताकि उस स्तर के लिए बातें करना है। और इस्कॉन का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य, अच्छा, ये इस्कॉन कौन सी परंपरा में है? ब्रह्म मध्व गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय का मतलब होता है श्री चैतन्य महाप्रभु के अनुजाई। श्री चैतन्य महाप्रभु कौन है? श्री चैतन्य महाप्रभु है स्वयं भगवान श्री कृष्ण। अंतर केवल यही है कि श्री कृष्ण अपने भगवान स्वरूप प्रकाश करके आए, लेकिन श्री चैतन्य महाप्रभु भक्त के रूप में आए हैं, भगवान के रूप में नहीं। यद्यपि ये भगवान हैं और ये भक्त के रूप में आने का मतलब क्या है कि राधा रानी के भाव लेकर आए हैं। भगवान के सबसे बड़ी भक्त कौन है? श्रीमती राधा रानी। तो कृष्ण राधा रानी के भाव लेकर आए हैं और वो है श्री कृष्ण चैतन्य। श्री चैतन्य महाप्रभु आके हमें क्या समझाया? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। भगवान कौन है? श्री कृष्ण। और कृष्ण का कांति है श्याम, श्याम सुंदर, लेकिन कृष्ण ने श्री राधा रानी के, श्रीमती राधा रानी के कांति लेकर आए, ये है श्री कृष्ण चैतन्य। राधा रानी कांति कैसी है? गोरी। तो चैतन्य महाप्रभु है गौर सुंदर, कृष्ण है श्याम सुंदर और चैतन्य महाप्रभु है गौर सुंदर। इस रूप में कृष्ण और राधा रानी एकत्रित होकर एक बन गए। कृष्ण और राधा रानी जब एक हो जाते हैं तो वो है श्री चैतन्य महाप्रभु। वैसे राधा रानी कौन है? राधा रानी है श्री कृष्ण के लादिनी शक्ति, मतलब आनंददायिनी शक्ति। और ये शक्ति और शक्तिमान, शक्ति कहां से आते हैं? शक्ति कहां से आती है? शक्तिमान से आती है। तो इस संदर्भ में शक्ति और शक्तिमान अलग हो सकते हैं, लेकिन शक्ति और शक्ति शक्तिमान से आते हैं, तो इसलिए शक्ति और शक्तिमान में कोई अंतर नहीं है। राधा रानी श्री कृष्ण के ही शक्ति है। कृष्ण का शक्ति मूलतः तीन कोटि के होते हैं, संधिनी, संबित और लादिनी। तो संधिनी शक्ति से सत्ता, सत्य, अस्तित्व, जो कुछ है वो संधिनी शक्ति के प्रकाश में। और चित, चेतन, चेतना, हम सब चेतन हैं। ये चेतना कहां से आ रहा है? भगवान के संबित शक्ति से। और हम सब आनंद चाहते हैं। आनंद कैसे मिलता है? आनंद के जो स्रोत है वो है श्रीमती राधा रानी। कृष्ण आनंदमय है और वो सारे कृष्ण को आनंद प्रदान करने वाली है श्रीमती राधा रानी। तो वैसे कृष्ण और कृष्ण शक्ति श्रीमती राधा रानी एकत्रित होकर, एक होकर ये जब प्रकाश होते हैं, प्रकट होते हैं, वो है श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु। भक्तों के रूप में आकर श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु क्या कर रहे हैं? हम सबको भक्ति कैसे करना है इसका शिक्षा दे रहे हैं। और भक्ति का मतलब क्या है? कृष्ण के प्रति जो प्रेम है उसी का नाम है। हमारे हृदय में प्रेम है और वो प्रेम जब भगवान के प्रति अर्पित होता है, अर्पण होता है, तो इसके प्रभाव से जो कुछ होता है वो है। जब हम किसी को प्यार करते हैं उनके लिए हम कुछ करना चाहते हैं, वो सेवा जो है वो है भक्ति। जिसको हम प्यार करते हैं उनके बारे में हम सबको बोलना चाहते हैं, है ना? अगर जो हमारे प्यारे हैं वो बहुत अच्छा किया पढ़ाई में, सोचो बहुत अच्छा किया, फर्स्ट हो गए, तो लोग क्या करते हैं? सबको बोलते हैं, सुनाते हैं, मेरा लड़का फर्स्ट हुआ है। क्यों? क्योंकि जो प्यार के नाते। तो ऐसे जब हम भगवान को प्यार करते हैं तो हम भगवान के गुणगान स्वतः ही करते हैं। तो ये है भक्ति के लक्षण। तो ये भक्ति करने के लिए सबसे पहले वो व्यक्ति को पहचानने का जरूरत होता है। जिसको हम नहीं जानते हैं उसको क्या हम प्यार कर सकते हैं? प्यार उसी को ही हम कर सकते हैं जो जिसके बारे में हम जानते हैं, जिसको हम पहचानते हैं। तो वैसे भगवान को पहचानना बहुत ही जरूरी है। तो चैतन्य महाप्रभु हमें समझा रहे हैं भगवान कौन है। भगवान कौन है? हाँ, भगवान कौन है? श्री कृष्ण ही भगवान है। कृष्णस्तु भगवान स्वयं। तो ये शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु हमें दे रहे हैं। इस रूप में भगवान नहीं कहते हैं कि मैं हूं भगवान, क्योंकि वे भक्तों के रूप में आए हैं। भक्त कभी नहीं बोलते हैं कि ओ भगवान है। भक्त का मनोभाव कैसी होती है? मैं भगवान के दास हूं, है ना? सेवा, भगवान है प्रभु और हम सब हैं उनके दास दासी। भगवान के सेवा ही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। ये शिक्षा श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में आकर श्री कृष्ण हमें शिक्षा दे रहे हैं। ये शिक्षा क्या है? कृष्णस्तु भगवान स्वयं। और श्री चैतन्य महाप्रभु ने क्या बोले हैं? श्री चैतन्य महाप्रभु में कलिजुग का जो युग धर्म है उसको भी प्रवर्तन कर रहे हैं। कलिजुग का युग धर्म क्या है? चार युग हैं, चार युग के चार धर्म हैं। सत्ययुग का धर्म है ध्यान, तत्पश्चात त्रेता युग का धर्म है यज्ञ, द्वापर युग का धर्म है पूजन और कलिजुग का धर्म है नाम संकीर्तन। कृते जद धायते विष्णु त्रेतायाम जजते मखो द्वापरे परिचर्यायाम कलो तद हरि कीर्तनाद। कृत मतलब सत्ययुग का युग धर्म है ध्यान। कृते जद धायते विष्णु और त्रेता युग का धर्म है जजते मखो, भगवान के लिए यज्ञ करना, और द्वापरे परिचर्यायाम, द्वापर युग का धर्म है भगवान के सेवा पूजा करना, और कलिजुग का युग धर्म क्या है? कलो तत् हरि कीर्तनाद। कीर्तनाद का मतलब है भगवान के नाम के नाम कीर्तन, अर्थात भगवान के महिमा प्रचार, भगवान का महिमा का कीर्तन। तो यह है कलिजुग का युग धर्म। कलिजुग में ध्यान संभव नहीं, कलिजुग में यज्ञ के द्वारा भगवान को कृपा प्राप्ति संभव नहीं, कलिजुग में पूजा भी नहीं कर सकते हैं, पूजा भी संभव नहीं है वैसे, केवल मंदिर में, इस्कॉन मंदिर में ही पूजा हो रहा है, सही रूप से पूजा और कहीं नहीं हो रहा है। हम देखते हैं बहुत सारे मंदिर हैं लेकिन वहाँ सही रूप से पूजन नहीं हो रहा है, भक्ति के साथ पूजा नहीं हो रहा है। और हमारे मंदिर में भी, मंदिरों में भी जो पूजा हो रहा है वो भी सही रूप से नहीं हो रहा है। 56 भोग, 35 बार भोग लगाना, हम तो केवल 6 बार लगाते हैं। 24 घंटा भगवान की सेवा में लगे रहते हैं जो सही रूप से अगर हम भगवान के पूजन करना चाहते हैं। और चाहे मंदिर में ठीक है पूजन हो रहा है, बल्कि घर में कौन पूजा कर सकते हैं? सब लोग नौकरी कर रहे हैं या कारोबार देख रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, सुबह से शाम तक व्यस्त रहते हैं, और घर में बाकी लोग जो हैं, बच्चे लोग स्कूल कॉलेज चले जाते हैं, पत्नी बच्चे को संभालते हुए, खाना पकाते हुए, घर संभालते हुए उनका समय नहीं रहता है, तो पूजा करने का समय कब होगा? सही रूप से पूजा कब संभव होगा, कैसे संभव होगा? इसलिए भगवान ये जो कलिजुग के लिए भगवत कृपा प्राप्ति का जो तरीका है वो बहुत सरल कर दिए, केवल नाम कीर्तन, भगवान के नाम जपना और भगवान के नाम, भगवान की महिमा कीर्तन करना, गाना, ये तो हम कहीं भी कर सकते हैं। पर नाम भगवान की जप करने के लिए कोई विशेष आयोजन का जरूरत नहीं, जैसे भी जहां भी हो जिस स्थिति में हो हम जप कर सकते हैं। घर में कर सकते हैं, बाहर कर सकते हैं, चलते हुए कर सकते हैं, बैठे हुए कर सकते हैं, सोए हुए भी हम जप कर सकते हैं। इस सिलसिले में श्री चैतन्य महाप्रभु के शिक्षाष्टकम में निर्देश दिया। शिक्षाष्टकम कौन 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 पढ़े हैं, पाठ किए हैं शिक्षाष्टकम। अच्छा, वो शिक्षाष्टकम पाठ करना, ये चैतन्य महाप्रभु ने, श्री चैतन्य महाप्रभु ने 8 श्लोक के द्वारा सारे तत्व विश्लेषण कर चुके हैं। ये सॉरी, लिव इट, जस्ट गो सिट डाउन। 8 तत्व के द्वारा, 8 श्लोक के माध्यम सारे तत्वों को क्या करना है, कैसे करना है और क्या प्राप्ति होगा वो करने से, सब कुछ वर्णन किए हैं श्री चैतन्य महाप्रभु ने। और दूसरी श्लोक में, सेकंड श्लोक में महाप्रभु कह रहे हैं, नाम नाम आकारी बहुधा। भगवान, आपके बहुत सारे नाम हैं। नाम नाम आकारी बहुधा, और उस सारे नामों में, समस्त नामों में आप अपने पूर्ण शक्ति प्रयोग किए हैं, पूर्ण शक्ति डाल दिया है। भगवान के नाम में भगवान की सारी शक्ति है, इसलिए नाम और भगवान का, नाम और भगवान में कोई अंतर नहीं है। नाम और नामी एक है, अभिन्न है, अभिन्नता नाम नामिना। नाम नाम आकारी बहुधा, निज सर्वशक्ति भगवान अपने शक्ति उसमें अर्पण किए। और तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काला, ये नाम ग्रहण करने में कोई भी स्थान या काल या पत्रता का विचार नहीं है। कोई भी व्यक्ति किसी भी समय किसी भी स्थान में ये नाम जप कर सकते हैं। मतलब हम किसी भी स्थिति में कर सकते हैं। कभी कभी भक्त लोग पूछते हैं, मैं क्या सोकर बिस्तर में लेट कर नाम कर सकते हैं? मैं बोलते हैं, हाँ जरूर। जब शरीर अशक्त हो जाएगा, जब हम उठने का शक्ति नहीं रहेगा, जब हम बिस्तर में लेटे रहेंगे, बुढ़ापे के कारण या बीमारी के कारण, मृत्यु के पूर्व, तो क्या हम नाम करेंगे या नहीं? कोई कोई भक्त पूछते हैं, मैं क्या ना नहा के क्या नाम कर सकता हूं? उसका भी जवाब यही है, जब बीमारी हो तब बीमार हैं, नहा ना सकते हैं तो क्या नाम नहीं करेंगे? हाँ, नहाए बिना भी हम नाम कर सकते हैं। इस सिलसिले में एक बहुत सुंदर दृष्टांत श्री चैतन्य महाप्रभु ने दिए हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु जब जगन्नाथपुरी में थे, तो एक दिन महाप्रभु ने टॉयलेट से जब बाहर आए, तो सब देखा वो दांतों से अपना टांग को, जीभा को ऐसे एक किए हैं, दबा के रखा। तो सब पूछा, अब ऐसे जीभा को दबा के रखे हैं? तो महाप्रभु बोला, मैं गंदा स्थान में था, पर टॉयलेट में था, वहां भी मेरा जीभा नाम भगवान का नाम कर रहा है। तो मैं इसलिए, ताकि वो नाम नहीं वहां नहीं कर सकते हैं, इसलिए मैं इसको दांतों के द्वारा दबा के रखा है। वहां एक बच्चा था, 6 साल की बच्चा, जिसका नाम था गोपाल। गोपाल ने पूछा, अगर उस गंदा स्थान में किसी को मृत्यु आता है तो वो क्या नाम करेगा या नहीं? प्रभु बोला, बहुत अच्छा, आज मैं गोपाल से हमें कुछ शिक्षा मिला है। इसलिए गोपाल 6 साल के जो गोपाल उसका नाम पड़ गया गोपाल गुरु, ताकि महाप्रभु ने उसको गुरु मान लिया गोपाल गुरु। अंत में बाद में उनका नाम हुआ गोपाल गुरु गोस्वामी, हमारे वैष्णव संप्रदाय के बहुत बड़े आचार्य बने थे। तो इस लीला के द्वारा श्री चैतन्य महाप्रभु क्या शिक्षा दे रहे हैं, किसी भी स्थान में किसी भी स्थिति में हमको भगवान के नाम लेना चाहिए। सोते हुए, खाते हुए, कभी किसी भी स्थिति में भगवान के नाम लेते रहना, क्योंकि इस नाम में ही भगवान अपने आप को प्रकट किए। चिंतामणि नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नता नाम नाम। नाम है चिंतामणि, जैसे चिंतामणि के स्पर्श से सब कुछ सोना बन जाता है इस भौतिक जगत में, बल्कि आध्यात्मिक जगत का जो चिंतामणि है उसकी स्पर्श मिलने से कृष्ण प्रेम मिल जाता है। नाम की प्रभाव से कृष्ण प्रेम मिलता है, इसलिए नाम है चिंतामणि। नाम चिंतामणि कृष्णस चैतन्य रस विग्रह, सारे चेतना को और सारे रसों को आधार या स्रोत है ये नाम चैतन्य रस विग्रह। और ये नाम पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिन्नता नाम नामी नाम, ये नाम और नामी में मतलब भगवान और भगवान के नाम में कोई अंतर नहीं है। जब हम भगवान का नाम लेते हैं हे कृष्णा हरे कृष्णा, कृष्ण वहां प्रकट हो जाते हैं। भगवान अपने नाम के माध्यम अपने आप को प्रकाश करते हैं, विशेष रूप से इस कली युग में। इसलिए इस कली युग में इस नाम के प्रचार की इतने जरूरत है। और चैतन्य महाप्रभु ने क्या निर्देश दिया कि इस हरि नाम को कृष्ण नाम को प्रचार सारा दुनिया भर होगा, हर गांव में हर शहर में। आज हम देख रहे हैं सारा दुनिया भर प्रचार हो रहा है, कहीं कहीं भी हम जाए हम देखते हैं कि हरे कृष्ण महामंत्र का कीर्तन हो रहा है, भक्त लोग एकत्रित होकर भगवान के नाम कीर्तन करते हैं। जब कुछ दिन के लिए कीर्तन नहीं होता है तो लोग बोलते हैं आए आप लोग कहाँ थे, आप लोग को देखा नहीं एक हफ्ता हुआ, ऐसे लोग बोलते हैं। और इस नाम के प्रभाव से, इस नाम के प्रभाव से क्या होता है, कलयुग का स्थिति जो है ये बहुत ही खतरनाक है, बहुत ही भयंकर है, ये पापों की समुद्र है, पापों की समुद्र है ये कलयुग। कलेर दोषे निधे राजन, दोष या पाप का निधि है ये कलयुग। लेकिन इस कलयुग का एक महान गुण है, अस्ति ही एक महान गुण, और वो है कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम प्रचित। केवल भगवान के नाम कीर्तन करने से ही हम ये भौतिक जगत के बंधन से, भौतिक जगत की जो कठिनाई है उससे मुक्त हो जाते हैं। और कलयुग है ये पाप के समुंदर, लेकिन इस कलयुग में जब हरिनाम होता है तो नाम की आवाज जितनी दूर जाता है वहां के सारे पाप खत्म हो जाते हैं। इसलिए नाम कीर्तन का बहुत सब एकत्रित होकर जो कीर्तन, इसका इतना महत्व है और इतना जरूरत है। जितने हम कर, ये दुनिया का स्थिति, दुनिया का हाल बहुत ही खराब है, तो इस भयंकर स्थिति को संशोधन करने का उपाय क्या है? हरिनाम कीर्तन। जब हम भगवान की महिमा कीर्तन करते हैं तो ये जो ध्वनि जो है, ये शब्द जो है, इसके आवाज जो है, जहां तक जाता है वहां के वातावरण पवित्र हो जाता है। इसलिए सब एकत्रित होकर मिलकर हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करना, भगवान की महिमा कीर्तन करना चाहिए। और मैं तो विश्वास करता हूं कि आप लोग सब कर रहे हैं, आप जप रहे हैं, और जब भी अगर गान के सुर में गाते हैं तो कीर्तन हो जाता है। जब 16 माला जप करना जरूरी है, लेकिन और कुछ समय निकलना है ताकि हम कीर्तन कर सकें। और भी अच्छा होता है कि सब एकत्रित होकर कीर्तन कर सकते हैं, तो वो संकीर्तन बन जाता है। तो ये है श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षा, और ये शिक्षा सारा दुनिया भर श्री प्रभुपाद प्रचार किए हैं, और प्रभुपाद के प्रभाव से इस्कॉन की माध्यम ये प्रचार दुनिया भर हो रहा है। यद्यपि प्रभुपाद लगभग 42 साल पूर्व प्रभुपाद इस धरती से चले गए हैं, लेकिन प्रभुपाद जो ये संस्थान तैयार किए हैं इस्कॉन, इसके द्वारा दुनिया भर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार हो रहा है। ये हमें बहुत देखकर बहुत आनंद हो रहा है कि आप सब आ रहे हैं, आए हैं, कृष्ण भक्ति के मार्ग अपनाए हैं, इस्कॉन में योगदान किए हैं, खुद इस मार्ग को अवलंबन करके इसका प्रचार कर रहे हैं। ये बहुत ही आनंददायक स्थिति है। आप लोग करते रहना। मैं जब आया था लगभग 1.5 साल पहले मैं आया था, तब आप में इतने लोग नहीं थे, कम थे आप लोग। इस बार हम देख रहे हैं कि आप बढ़ गए हैं, और ये फ्राइडे है, शायद काफी लोग आ नहीं सके। अगर मैं रविवार को आता तो और बहुत सारे लोग होता था, तो ठीक है। और अगले बार जब आऊंगा तब देखूंगा और भी ज्यादा है ना। जो जिस काम के द्वारा, जिस कार्य के द्वारा जगत का मंगल होता है, वो कार्य करना चाहिए, और जगत का मंगल इसके द्वारा ही हो रहा है, इसलिए इसके प्रचार होना बहुत ही जरूरी है। हरे कृष्णा। कोई प्रश्न है किसी को? Does anybody have any question? Okay. ठीक है, अगर प्रश्न नहीं है, प्रश्न कब नहीं रहता है?
या एक प्रश्न तो नहीं है, गुरु महाराज एक रिक्वेस्ट है कि जो पिछले 2 दिन जो ब्रह्म संहिता के बारे में आपने सूरत में जो बताया है, तो यहाँ भी थोड़ा सा आप उनके बारे में थोड़ा बताएंगे तो अच्छा।
जरूर। तो वहां तो मैं 4 दिन के लिए सेमिनार दे रहा हूं,
थोड़ा सा
4 मिनट में होगा। ठीक है। तो थोड़ा कुछ बोलने का जो अनुरोध आया है। ब्रह्म संहिता ब्रह्मा जी के दिया हुआ भगवान की वर्णन, भगवत धाम की वर्णन, ये भौतिक जगत की सृष्टि के वर्णन सब कुछ ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता में दिए। ये ब्रह्म संहिता श्री चैतन्य महाप्रभु प्राप्त हुए थे जब श्री चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत में भ्रमण कर रहे थे। वहाँ एक मंदिर है जिसका नाम है आदिकेशव मंदिर। जब महाप्रभु उस मंदिर में थे, गए थे, तो उनको इस ब्रह्म संहिता देखा, प्राप्त हुआ। और उसके जो पांचवा अध्याय जो है ब्रह्म संहिता का, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो श्री चैतन्य महाप्रभु अपने हाथ से उसको लिखकर उसको लाए थे, जगन्नाथपुरी में अपने भक्तों को प्रदान किए थे। ऐसे हम देखते हैं ब्रह्म संहिता कितने ही महत्वपूर्ण है। चैतन्य महाप्रभु सन्यासी होने के कारण अपने बस कुछ भी नहीं रखते थे, केवल उनके साथ जो व्यक्ति उनको सेवक था, सेवक रहता था, उनको एक सेट कपड़ा और कमंडलू पानी का जो पात्र है उसको कैरी करते थे। महाप्रभु ने खुद कुछ नहीं रखते थे और दो हाथ से केवल जप करते थे। ये दाहिना हाथ से 10 तक काउंट होता है ना, वैदिक काउंटिंग सिस्टम है 1 से 10 इस हाथ में, और इस हाथ में 1 10 2 10, उस तत्पश्चात 1 शत 2 शत 3 शत 1000 2000 3000 ऐसे गणन होता है। तो मतलब महाप्रभु के पास कुछ भी नहीं रहता था, तो महाप्रभु खुद अपने हाथों से लिखकर उसको लाए थे। इससे हम समझ सकते हैं ये ब्रह्म संहिता कितनी महत्वपूर्ण है। तो सूरत में मैं ब्रह्म संहिता के सेमिनार दे रहा हूँ 4 दिन तक। ये ब्रह्म संहिता में सब कुछ वर्णन हुआ है। ये ब्रह्म संहिता ब्रह्मा कब प्रकाश किया, कब वर्णन किया, ब्रह्म संहिता कब बताया। ब्रह्मा जी को आप सबको पता है ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ था। किसको पता नहीं है ब्रह्मा जी का आविर्भाव कैसे हुआ था। अच्छा, ब्रह्मा जी भगवान के नाभि से आए थे, प्रकट हुए थे। भगवान के नाभि से एक कमल निकला, गर्भोदक्षय विष्णु, गर्भ उदक में ब्रह्मांड के आधा भाग जो एक पानी से भरा हुआ है, जो भगवान के शरीर से निकला था, उसमें सोए हुए अनंत नाग के सज्जा पर। और ब्रह्मा के नाभि से एक कमल निकला है और उस कमल सॉरी गर्भोदक्ष विष्णु के नाभि से एक कमल निकला है और उसमें ब्रह्मा जी विराजमान थे। ऐसे ब्रह्मा जी का जन्म। और ब्रह्मा जी जब आए, उनको पता नहीं लगा कि मैं कौन हूं, मैं कहां से आया हूं। इस भौतिक जगत में जो भी आते हैं अज्ञान में आते हैं, कुछ भी ज्ञान नहीं रहता है। लेकिन मनुष्यों के जो संतान और बच्चा पैदा होता है उसको कोई चेतना नहीं रहता है, धीरे धीरे उसका चेतना का विकास होता है, उसका ज्ञान बढ़ता जाता है। लेकिन ब्रह्मा जी का चेतना पूर्ण था, क्योंकि वो भगवान के पास आए, भगवान से आए हैं, लेकिन उसको कुछ पता नहीं था कि वो कौन है। तो सोचा, ब्रह्मा जी ने सोचा, अगर उस कमल के जो नाल हैं उसके नीचे हम उतरते हैं तो हमको पता चलेगा मैं कहाँ से आया हूँ, तब हमको पता चलेगा कि मैं कौन हूँ। लेकिन हजारों साल तक उतरने के पश्चात भी उसका तल नहीं मिला, तब ब्रह्मा जी फिर से आकर उस कमल पर बैठ गए। तब ब्रह्मा जी सोचने लगा आप क्या करें। तब वो जो गर्भ समुद्र कोई लहरी में लहरियों में जो आवाज हो रहा था परस्पर संघात के कारण तपह तपह, उससे ब्रह्मा जी का प्रेरणा मिला कि अंतर्मुखी होने का। और ब्रह्मा जी जब अपना चेतना को अंतर्मुखी किया तब ब्रह्मा जी एक शब्द सुना, वो शब्द है ओमकार, ओम ये शब्द सुना। तो ब्रह्मा जी उस शब्द पर ध्यान लगाया तो उस शब्द से गायत्री का प्रकाश हुआ, और उस गायत्री पर ध्यान करने से ब्रह्मा जी के हृदय में ज्ञान का प्रकाश हुआ, वेद का प्रकाश हुआ। तो इसलिए वेद को, गायत्री को वेद माता कहा जाता है। सारे वैदिक ज्ञान जो है वेद का जो ज्ञान है उसका माँ है गायत्री। जैसे माँ से संतान का जन्म होता है, गायत्री से वेद का जन्म हुआ। और ऐसे चेतना को अंतर्मुखी करने से ब्रह्मा जी ने भगवान को दर्शन किया। और भगवान के दर्शन कैसी होती है, जहां भगवान है वहां चले जाते हैं। भगवान का दर्शन जब होता है तब हम वहां चले जाते हैं जहां भगवान है। तो उसका वर्णन भगवान ब्रह्मा जी ने कर रहे हैं। ये ब्रह्म संहिता का 29 से 56 श्लोक तक ब्रह्मा जी का ये दर्शन के वर्णन हो किए हैं ब्रह्मा जी ने। पहले ही बता रहे हैं ये भगवत धाम गोलोक कैसी है। वो भगवान की धाम चिंतामणि से बना है। भगवान कहाँ रहते हैं, वृंदावन में, वन। उस वन में बहुत सारे वृक्ष हैं, पेड़ हैं, वो सारे पेड़ हैं कल्प वृक्ष। चिंतामणि प्रकर सत्मसु कल्प वृक्ष लक्षावृतेषु, लाखों लाखों वृक्ष जो है वो सारे कल्प वृक्ष। लक्षावृतेषु सुरभीर अभिपालयन्तम्, भगवान गाय चरा रहे हैं अपने सखाओं के साथ, लाखों लाखों गाय, और सब गाय हैं सुरभी गाय। सुरभीर अभिपालयन्तम्, और वहां भगवान गोपियां के साथ लीला विलास कर रहे हैं। हजारों गोपियां के साथ भगवान लीला विलास कर रहे हैं, और सारे गोपियां हैं लक्ष्मी। लक्ष्मी सहस्र शत संभ्रम से बुमानम, ऐसे भगवत धाम के वर्णन करने के पश्चात भगवान के वर्णन कर रहे हैं। वेणुं कनन्तम अरविन्द ललायताक्षं, भगवान श्याम सुंदर बांसुरी बजा रहे हैं। वेणुं कनन्तम, उनकी आंखों अरविंद दलायताक्षम, अरविंद मतलब कमल के पत्र जैसे आयति आयत है, विस्तृत है, अरविंद दलायताक्ष बढ़ावतान, उनके मस्तक पर मयूर पंखे, बढ़ावतान समासिताम बुद्ध सुंदरंगम, उनके सुंदर शरीर के रंग हैं बादल के नीलिमा जैसे। ऐसे भगवान के वर्णन करते हुए करने के पश्चात उन्होंने एक एक करके बता रहे हैं अवतार कौन है, कितने सारे अवतार आते हैं इस धरती पर पृथ्वी में। जैसे भगवान भगवद गीता में कह रहे हैं कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम अधर्मस्य तदात्मानं सृजम। इस भौतिक जगत में जब अधर्म का विस्तार होता है और धर्म का ग्लानि होता है तब भगवान अवतीर्ण होते हैं। वैसे भगवान के अनंत कोटि अवतार हैं, रामादि मूर्तिषु कला नियमेन तिष्ठ, राम आदि भगवान के जितने सारे अवतार हैं वो हैं भगवान के अंश का अंश। ऐसे वर्णन करने के पश्चात वर्णन हो रहा है ये भौतिक जगत कैसी है, ये भौतिक जगत की पालन करने वाली कौन है, दुर्गा, दुर्गा की दुर्गा देवी क्या कर रहे हैं, सृष्टि स्थिति साधन शक्ति रेखा, सृष्टि स्थिति प्रलय साधन शक्ति रेखा, छाये वजस्य भुवनानि विभर्ति दुर्गा। दुर्गा जो इस जगत को सृष्टि करते हैं, पालन करते हैं और संहार करते हैं, विनाश करते हैं, वो दुर्गा है भगवान की शक्ति के छाया, छाये व शिवजी कौन है इसके वर्णन करते हुए वर्णन हो रहा है। जैसे क्षीरम जथा दधि विकार विशेष योगात, दूध क्षीरम, दूध जैसे विकार के कारण मतलब एसिड के संयोग होने से दूध क्या हो जाता है, दही बन जाता है। क्षीरम जथा दधि विकार विशेष, विकार विशेष योगा विकार हो जाता है, दही बन जाता है। तब दूध और दही में कोई अंतर है भी नहीं, नहीं भी है भी, दूध ही दही बन गया। लेकिन दूध दही बन सकता है बल्कि दही कभी दूध नहीं बन सकता। तो वैसे ही कोई विशेष कार्य संपादन करने के लिए भगवान शिव जी के रूप में प्रकट हुए हैं, अर्थात शिव जी भगवान का ही अवतार है। विशेष कार्य क्या है, विशेष कार्य संहार कार्य साधन करने के लिए और इस भौतिक जगत के साथ संयोग स्थापन। भौतिक जगत या माया भगवान की बहिरंगा शक्ति है, तो बहिरंगा शक्ति के साथ अगर भगवान, बहिरंगा शक्ति के साथ बाहर की जो शक्ति है उसके साथ भगवान डायरेक्ट संयोग स्थापन कर सकते हैं, नहीं, तब तो अंतरंगा बन जाएगा। भगवान अगर डायरेक्टली उसके साथ संयोग स्थापन करते हैं तो इसलिए इस जगत रूपी जो माया है, दुर्गा देवी है, उनके साथ संयोग स्थापन करने के लिए भगवान शिव जी के रूप ले लिए, ये विशेष कार्य संपादन करने के लिए। तब देखिए शिव जी कौन है, दुर्गा के पति हैं, है ना, दुर्गा कौन है, माया, माया दे महामाया, दुर्गा सती पार्वती काली इत्यादि ये माया के रूप हैं और उनके पति कौन है, शिव जी। तो इस कारण भगवान ही स्वयं शिव जी के रूप में प्रकट हुए हैं। सूरज क्या कर रहा है? सूरज जो ज्योति प्रदान कर रहे हैं इस भौतिक जगत में भ्रमण करते हुए, और सूरज क्या कौन है? सारे ताराओं के राजा, ज्योतिष के राजा, राजा समस्त सूर्यमूर्ति अशेष तेज, अशेष तेज, असीम शक्ति है सूरज। और वो सूरज जस्सा गया भ्रमति संभृत काल चक्र, काल के चक्र में आरोहण करके भगवान के निर्देश अनुसार सूरज भ्रमण कर रहा है। तो वैसे सारे वर्णन इस ब्रह्म संहिता में हमें मिल रहा है। गणेश, गणपति, गणपति गणेश क्या करते हैं? सिद्धि विनायक बोलते हैं ना, सिद्धि दाता गणेश आय, सिद्धि प्रदान करते हैं, मतलब सफलता प्रदान करते हैं। जो एक काज हम कार्य हम करना चाहते हैं, गणेश उसको, गणेश के कारण उसको सफलता मिलता है। तो ये शक्ति गणेश को कैसे मिला? जग पाद पल्लव जुगंग विनिधाय कुंभ दंदे प्रणाम समय सगनाधि राजा विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य। गणेश विघ्नन विहंतुम, विघ्न मतलब बाधा, रुकावट, ऑब्स्टेकल्स, विहंतुम नाश कर देते हैं। सफलता कैसे मिलता है? जब कोई रुकावट नहीं होता है तो सफलता आएगी। तो जो विघ्नन जो है, विघ्न विनाशन, विघ्न को विनाश कर देते हैं गणेश। जगत त्रयस्य त्रिभुवन का, ऊर्ध में स्वर्गलोक, मर्त्यलोक और पाताल, ये त्रिलोक का जगत त्रयस्य विघ्नन विहंतुम अलमस्य जगत्रयस्य। कैसे? भगवान की श्रीपाद पद्म अपने मस्तक पर धारण कर दिया, गणेश का ये शक्ति मिला है। ऐसे हम सारे सब कुछ के बारे में हमें जानकारी होता है, मिलता है यह ब्रह्म संहिता के माध्यम। तो ब्रह्म संहिता किसके पास है? अच्छा, किसके पास नहीं है? अच्छा, जिसके पास है आप पढ़ रहे हैं। कौन कौन पढ़ रहे हैं नियमित रूप में ब्रह्म संहिता? अच्छा, अपने पास है लेकिन पढ़ नहीं रहे हैं, आप पढ़ेंगे। जिसके पास नहीं है ब्रह्म संहिता लेंगे, लेकर पाठ करेंगे। कौन कौन लेंगे और पाठ करेंगे, हाथ उठाएंगे। थैंक यू वेरी मच। ब्रह्म संहिता है ना यहाँ? ठीक है। हरे कृष्ण।
आपने बहुत सारे स्थिति में भगवान का भजन करने का नाम बताया, तरीका बताया, ध्यान करने का भी तरीका बताया कि भगवान के में ध्यान लग जाए भजन करते हो।
ध्यान का तरीका ना, आपका प्रश्न क्या है?
भगवान के भजन में ध्यान लगे, अभी ध्यान नहीं लगता है उनकी तरफ।
ओ,
उनका कोई तरीका है?
तरीका है कि ध्यान लगाना। जब जब देखते हैं मन विक्षिप्त हो गए हैं तो पकड़ के लाना, क्यों होना चाहिए? ये अचित है, उचित है क्या? ये करना ठीक है? मन जब इधर उधर भागता है सही है ये?
सही तो नहीं पर होता है।
हाँ, तो जो काम सही है, सही नहीं है उसको सही बनाना है, और कौन बनाएगा? आपको ही बनाना पड़ेगा। तो जब मन इधर उधर भागता है, जब ख्याल होता है कि ओ अरे मन तो चला गया है और कहीं पकड़ के वहां पर ना है ना। आप जब भगवान के नाम जप रहे हैं माला में जपते हैं अच्छा बहुत अच्छा, तो ऐसे जब जप रहे हैं कीर्तन हो रहा है उसका श्रवण होने से, और अगर श्रवण मन और कहीं चला गया तो उसको पकड़ के वापस लाना। हरे कृष्ण। हाँ
प्रश्न है कि अपने गायत्री देवी के बारे में बोला, तो गायत्री देवी का लोग ओम भूर्भुवः स्वः मंत्र करते हुए इस्कॉन के डिवोटी हम लोग कर सकते हैं और उसका भी ध्यान कर सकते हैं, और ऐसा कोई है थोड़ा।
हाँ हाँ, गायत्री जो है मंत्र, मंत्र जप करना, लेकिन हरे कृष्ण महामंत्र जप भी कर सकते हैं, कीर्तन भी कर सकते हैं, और सब इकट्ठा होकर संकीर्तन भी कर सकते हैं। ये है महामंत्र के महिमा। हाँ? गायत्री केवल जप, मतलब उसको आवाज नहीं होगा, मन में होगा। आवाज जो होगा केवल खुद सुनने के लिए, यह है जप की प्रक्रिया।
गायत्री देवी क्या है?
गायत्री देवी, गायत्री है मंत्र, और आध्यात्मिक विचार से आध्यात्मिक जगत में सब कोई रूप है। जैसे यहां जमुना एक नदी, बल्कि वहां जमीना एक व्यक्ति है, वैसे ही गायत्री भी एक देवी है। जैसे जमुना देवी से गायत्री देवी, बल्कि उनका प्रभाव क्या है, उनकी प्रभाव से भगवान को हम पहचान सकते हैं। हाँ, गायत्री जप करके उनकी कृपा प्राप्त होना चाहिए।